एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई है, मिरिंडा फ्रेंच गेट्स की द मोमेंट ऑफ लिफ्ट।
बिल्कुल, और ये किताब मतलब सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस बारे में है कि कैसे महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने से, उन्हें सशक्त करने से सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी मानवता का फायदा होता है।
हाँ, और आज के समय में तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हम गरीबी की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं,
और ये किताब कहती है कि इन सब का एक बहुत बड़ा समाधान महिलाओं के सशक्तिकरण में छुपा है। ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है।
सही कहा। और इसकी लेखिका मिलिंडा फ्रेंच गेट्स, उन्हें कौन नहीं जानता?
हाँ, दुनिया की सबसे जानी मानी परोपकारी हस्तियों में से एक है। पहले बिजनेस में भी काफी सफल रही और खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों के हक की एक बहुत मजबूत आवाज है वो।
उनकी अपनी कहानी भी तो है, मतलब कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स में डिग्री,
ड्यूक यूनिवर्सिटी से, हाँ,
फिर MBA,
और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम, वो भी कोई 10 साल तक।
जी, और वहां वो सीनियर लीडरशिप तक पहुंची। सोचिए उस जमाने में टेक इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर पुरुष ही थे।
बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन शायद आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की को चेयर के तौर पर।
हाँ, पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा हो गए वो दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर काम कर रही हैं।
अनगिनत देशों में गई हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से मिली हैं, खासकर महिलाओं से। उनकी परेशानियां, उनकी चुनौतियां, उन्हें बहुत करीब से देखा है और समझा है।
और यही अनुभव है जो इस किताब को इतना खास बनाता है। वो सिर्फ आंकड़े नहीं देती, नहीं, वो आंकड़ों को कहानियों से जोड़ती हैं,
पॉलिसी को जमीन की हकीकत से जोड़ती हैं। उनके पास एक अनोखा पर्सपेक्टिव है ना?
टेक्नोलॉजी, बिजनेस, परोपकार, सब कुछ।
बिल्कुल, और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल उन आवाजों को उठाने के लिए करती हैं जो अक्सर सुनी नहीं जाती।
सही, तो ये किताब द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कई चीजों का मिश्रण है।
हाँ, इसमें उनकी अपनी पर्सनल कहानी भी है, उनकी यात्रा,
समाज विज्ञान का विश्लेषण भी है, दुनिया भर की महिलाओं की कहानियां भी हैं,
और इन सब के साथ एक तरह का कॉल टू एक्शन भी है, एक आवाहन कि हमें कुछ करना चाहिए।
किताब का जो मूल तर्क है वो बहुत साफ है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, उन्हें तब तक पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता जब तक हम वो रुकावटें नहीं हटाते जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं।
और ये लिफ्ट वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ये किसी को नीचे खींचने की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबको साथ लेकर ऊपर उठाने की बात है, इसीलिए मोमेंट ऑफ लिफ्ट।
किताब हमें एक सफर पर ले जाती है ना, सिलिकॉन वैली से लेकर,
हाँ, अफ्रीका के गांवों तक, भारत के शहरों तक, ऐसी जगहों पर जहां शायद हम खुद कभी ना जा पाए।
और इस सफर में हम ये भी देखते हैं कि कैसे मिलिंडा गेट्स का अपना नजरिया भी बदला, कैसे वो सिर्फ डेटा और लॉजिक से आगे बढ़ी।
हाँ, मानवीय रिश्तों, सहानुभूति, एम्पैथी, इन चीजों की अहमियत को उन्होंने समझा।
इसमें कई अलग अलग मुद्दों पर बात है पर सब जुड़े हुए हैं।
या सर, जैसे परिवार नियोजन, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, लड़कियों की पढ़ाई,
और वो अनदेखा बोझ अवैतनिक काम का,
हाँ, बाल विवाह, खेती में महिलाओं की भूमिका, और दफ्तरों में भी जो भेदभाव होता है वो भी।
ये दिखाती है कि ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जगह कुछ सुधार होता है तो उसका असर दूसरी जगह भी दिखता है।
बिल्कुल, तो चलिए कुछ मुख्य थीम्स पर थोड़ी और बात करते हैं।
हाँ, जरूर। एक मुद्दा जिस पर किताब बहुत जोर देती है वो है परिवार नियोजन। और ये दिलचस्प है कि मिलिंडा गेट्स खुद मानती हैं कि शुरुआत में वो इस पर काम करने से हिचक रही थीं।
हाँ, उन्हें लगा था कि ये शायद विवादास्पद हो सकता है, लोग क्या कहेंगे।
लेकिन जब उन्होंने महिलाओं से सीधे बात की, खासकर विकासशील देशों में,
तो बार बार एक ही बात सामने आई, महिलाएं खुद गर्भ निरोधक चाहती थी, ये उनकी जरूरत थी।
ये उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा नहीं था।
नहीं, ये उनके लिए अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का सवाल था, अपने स्वास्थ्य पर, अपने बच्चों के भविष्य पर।
बिल्कुल, जब एक औरत ये तय कर सकती है कि उसे कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए,
तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, शायद कोई काम कर सकती है, पैसे कमा सकती है,
और अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाती है, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर।
आंकड़े भी यही बताते हैं, परिवार नियोजन तक पहुँच से माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु दर कम होती है और आर्थिक तरक्की भी होती है।
हाँ, और इसी से जुड़ा है अगला अहम मुद्दा, माँ और नवजात शिशु का स्वास्थ्य।
जी।
आज भी लाखों माएं और बच्चे ऐसी वजहों से मर जाते हैं जिन्हें रोका जा सकता है।
ये सोचना भी कितना दुखद है।
और किताब बताती है कि जन्मों के बीच सही अंतर रखना कितना जरूरी है, डिलीवरी के समय सही देखभाल मिलनी चाहिए।
और कुछ बहुत ही सरल उपाय भी हैं जो जाने बचा सकते हैं।
बिल्कुल, भारत के शिवगढ़ का उदाहरण दिया है उन्होंने, डॉक्टर गैरी डार्मस्टेड का काम।
हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है।
उन्होंने दिखाया कि कैसे कुछ बहुत ही आसान और वहाँ की संस्कृति के हिसाब से सही बदलावों से बच्चों की मृत्यु दर लगभग आधी हो गई।
जैसे वो कंगारू केयर।
हाँ, माँ का बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रखना, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट।
इससे बच्चे का तापमान सही रहता है, वो सुरक्षित महसूस करता है,
पान भी बेहतर होता है। और दूसरा, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहलाने में थोड़ी देर करना।
कितनी छोटी छोटी बातें पर कितना बड़ा असर।
माँ और बच्चा स्वस्थ हो तो फिर बात आती है लड़कियों की शिक्षा की।
और ये तो एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा पीढ़ियों तक मिलता है,
है ना?
हाँ बिल्कुल। पढ़ी लिखी लड़की, वो देर से शादी करती है,
उसके बच्चे कम होते हैं और ज्यादा स्वस्थ होते हैं,
वो खुद ज्यादा कमा पाती है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने की ज्यादा कोशिश करती है।
ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है, एक अच्छा चक्र जो पूरे समाज को ऊपर उठाता है।
लेकिन लड़कियों को स्कूल भेजना सिर्फ फीस भरने की बात नहीं है, कई और मुश्किलें हैं।
हाँ, बहुत सी बाधाएं हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जैसे घर के काम का बोझ,
पानी भरना, लकड़ी लाना, इन सब में लड़कियों का कितना समय चला जाता है।
स्कूलों में साफ सफाई, खासकर टॉयलेट्स की कमी, पीरियड के दिनों में लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी।
और स्कूल आने जाने में सुरक्षा का डर भी होता है। किताब में इन मुश्किलों के हल पर भी बात की गई है, जैसे भारत में वो साइकिल वाला प्रोग्राम था।
हाँ, लड़कियों को साइकिलें दी गईं ताकि वो आसानी से स्कूल आ जा सके।
या स्कूलों में अलग और साफ टॉयलेट बनाना, ये छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं।
अब आते हैं उस मुद्दे पर जो अक्सर मतलब अनदेखा रह जाता है, अवैतनिक घरेलू काम।
हाँ, वो सारा काम जो महिलाएं घर पर करती हैं, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल,
ये काम किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ है ना, पर इसे गिना नहीं जाता,
इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता।
और ये महिलाओं पर एक अदृश्य बोझ डालता है, एक तरह की टाइम पॉवर्टी यानी समय की गरीबी।
सही का अनुमान है कि अगर इस काम की वैल्यू लगाई जाए तो ये खरबों डॉलर की होगी।
सोचिए जरा।
और इसी वजह से महिलाओं के पास अक्सर बाहर काम करने या पढ़ने या कुछ और करने का समय ही नहीं बचता।
और ये सिर्फ गरीब देशों की बात नहीं है, अमीर देशों में भी यही हाल है। वो सेकंड शिफ्ट वाली बात, ऑफिस के बाद घर पर दूसरी नौकरी।
मेलिंडा गेट्स ने अपने घर का भी उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने और बिल गेट्स ने मिलकर कोशिश की कि घर के काम बराबर बटे।
ये दिखाता है कि बदलाव घर से शुरू हो सकता है और होना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत गंभीर मुद्दा है, बाल विवाह।
हाँ, ये तो लड़कियों का बचपन और भविष्य दोनों छीन लेता है।
ये उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उनकी पढ़ाई रुक जाती है,
कम उम्र में माँ बनने से उनकी सेहत खतरे में पड़ जाती है,
और वो गरीबी के एक दुष्चक्र में फंस जाती हैं। ये अक्सर उन समाजों में होता है जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता है।
लेकिन यहाँ भी उम्मीद है। किताब में भारत की एक लड़की रुचि की कहानी है।
हाँ, उसने हिम्मत दिखाई, अपनी तय शादी का विरोध किया,
और बाद में वो दूसरी लड़कियों के लिए एक आवाज बनी, उन्हें बाल विवाह के खिलाफ लड़ने में मदद की।
ये दिखाता है कि अगर लड़कियों को सपोर्ट मिले, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिले, तो वो बदलाव ला सकती हैं।
लेकिन इसके लिए पूरे समाज को साथ आना होगा, पुरुषों को, लड़कों को, धर्म गुरुओं को।
हाँ, सबको मिलकर ये सोच बदलनी होगी कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देना ही सही है।
अच्छा, अब खेती की बात करते हैं। जब हम किसान सोचते हैं तो अक्सर पुरुष ही नजर आता है।
हाँ, लेकिन किताब याद दिलाती है कि खेती में महिलाओं की भूमिका कितनी ज्यादा है, खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में।
वो खेतों में अक्सर पुरुषों से ज्यादा मेहनत करती हैं।
लेकिन उन्हें संसाधन पुरुषों के बराबर नहीं मिलते, ना अच्छे बीज, न खाद, न कर्ज,
ना ही जमीन पर उनका हक होता है अक्सर।
और रिसर्च ये बताती है कि अगर महिला किसानों को पुरुषों जितने ही मौके और साधन मिले,
तो खेती की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ सकती है।
सोचिए, इससे कितने लाखों लोगों का पेट भर सकता है, कितनी गरीबी कम हो सकती है।
तो ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं रहा।
नहीं, ये लैंगिक समानता का मुद्दा है, और ये हमारी खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है।
और आखिर में किताब कामकाजी महिलाओं की भी बात करती है, दफ्तरों में उनके संघर्षों की।
यहाँ मेलिंडा गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट के अनुभव भी बताती है, टेक इंडस्ट्री जहाँ पुरुषों का दबदबा था।
वो ब्रो कल्चर की बात करती हैं।
हाँ, एक ऐसा माहौल जो पुरुषों के लिए तो ठीक है, पर महिलाओं के लिए मुश्किल पैदा करता है। उन्हें अपनी जगह बनाने में, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है।
वेतन में फर्क, प्रमोशन में रुकावटें,
मेंटरशिप की कमी, और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे भी।
लेकिन वो ये भी कहती हैं कि डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के लोगों का साथ काम करना सिर्फ नाइंसाफी दूर करने के लिए नहीं
बल्कि बिजनेस के लिए भी अच्छा है। इससे बेहतर आइडियाज आते हैं, बेहतर प्रोडक्ट बनते हैं
और इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे पेड फैमिली लीव,
वेतन में पारदर्शिता और जानबूझकर कोशिश करनी होगी कि महिलाएं लीडरशिप रोल में आएं।
तो इन सब अलग अलग चैप्टर्स और कहानियों से कुछ बड़े संदेश निकलते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे जरूरी है वो गुणक प्रभाव।
मतलब जब आप महिलाओं में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फायदा कई गुना होकर लौटता है।
सिर्फ उस महिला को नहीं, उसके परिवार को, समाज को, पूरे देश को, ये एक लहर की तरह फैलता है।
दूसरा बड़ा सबक है आपसी जुड़ाव,
इंटरकनेक्टेडनेस।
हाँ, कि सारे मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, अधिकार, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। आप एक को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते।
हमें एक पूरी तस्वीर देखनी होगी, होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा।
तीसरा, आंकड़ों और कहानियों की ताकत दोनों जरूरी है। आंकड़े हमें प्रॉब्लम का स्केल बताते हैं, दिमाग को समझाते हैं,
पर कहानियां दिल को छूती हैं, वो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मेलिंडा गेट्स इन दोनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं।
चौथा संदेश है उन अदृश्य बाधाओं को पहचानने का,
जैसे घर का वो सारा काम जिसका कोई हिसाब नहीं, या समाज की वो सोच, वो पूर्वाग्रह जो हमें दिखते नहीं पर असर डालते हैं।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ ये देख लें, घर का काम तो औरत की ही जिम्मेदारी मानी जाती है ज्यादातर। ये कितनी बड़ी रुकावट है, इस पर बात कम होती है।
इन्हें पहचानना और इन्हें चुनौती देना बहुत जरूरी है।
और पांचवां, कि सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें काफी नहीं, सिस्टम में बदलाव, सिस्टमिक चेंज लाना होगा,
कानूनों में, नीतियों में, समाज की सोच में।
और इस बदलाव की लड़ाई में पुरुषों का साथ होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है,
हम सब की साझा जिम्मेदारी है। लैंगिक समानता हम सबके हित में है।
किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो याद रह जाती हैं। कुछ कोट्स तो बहुत पावरफुल हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहती हैं, अगर आप समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको महिलाओं को नीचे गिराना बंद करना होगा।
कितनी सीधी सच्ची बात है, सबकी तरक्की एक दूसरे पर निर्भर है।
और एक और, हम तब तक सशक्त नहीं हैं जब तक हम में से सबसे कमजोर सशक्त नहीं हो जाती।
ये याद दिलाता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, जो सबसे पीछे हैं उनकी आवाज सबसे पहले सुननी है।
मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, समाज को बदलने का सबसे तेज तरीका दुनिया की महिलाओं को संगठित करना है।
हाँ, इसमें महिलाओं की कलेक्टिव पावर पर कितना विश्वास है।
और शायद वो बात जो पूरी किताब का सार है, आंकड़े आपकी आंखें खोल सकते हैं लेकिन मानवीय कहानियां आपके दिल को छूती हैं, और दिल ही है जो आपको आगे बढ़ाता है।
बिल्कुल, दिमाग और दिल दोनों का संतुलन।
सही,
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम क्या हो सकते हैं।
हाँ, ये जरूरी सवाल है, और जवाब है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शुरुआत अपने घर से,
अपने पूर्वाग्रहों को देखें। क्या हम लड़के लड़की में जाने अनजाने कोई भेद करते हैं?
घर के कामों का बंटवारा कैसा है, क्या वो बराबर है, इस पर बात करें।
लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दें, मजाक में भी ऐसी बातें ना कहें जो किसी जेंडर को कमजोर दिखाएं।
फिर अपने काम की जगह पर अगर हम ऐसी पोजीशन में हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं।
बराबर वेतन की बात करें, पेड फैमिली लीव की वकालत करें,
महिला सहकर्मियों को सपोर्ट करें, उन्हें मेंटर करें, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सब कंफर्टेबल महसूस करें।
अपने समुदाय में भी हम भूमिका निभा सकते हैं,
उन संस्थाओं का साथ दें जो महिलाओं और लड़कियों के लिए काम कर रही हैं, वॉलंटियर करें या डोनेट करें।
ये देखें कि हमारे आसपास जो फैसले हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी है या नहीं, उनकी आवाज सुनी जा रही है या नहीं।
और आम तौर पर बस जागरूक रहें,
जानकारी रखें, दूसरों की सुने, सहानुभूति रखें,
और जहां भी मौका मिले लैंगिक समानता के पक्ष में बोलें, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, वोट देते समय।
ये समझें कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा बदलाव लाते हैं, किताब यही उम्मीद देती है।
इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख रही वो शायद अवैतनिक काम वाला मुद्दा था, ये जानना कि ये इतनी बड़ी अदृश्य अर्थव्यवस्था है और ये महिलाओं के समय की गरीबी का कितना बड़ा कारण है, ये सच में चौंकाने वाला था। और शिवगढ़ जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि समाधान मुश्किल नहीं होते, बस नियत चाहिए।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने से पुरुषों का नुकसान होगा, ये सबके लिए फायदेमंद है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार खुशहाल होते हैं, इकोनॉमी मजबूत होती है, समाज ज्यादा स्थिर होता है। ये किताब एक उम्मीद जगाती है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, डेटा और कहानियों दोनों का सहारा लेकर, तो हम सच में एक ज्यादा बराबर और बेहतर दुनिया बना सकते हैं।
और शायद ये सवाल छोड़ जाती है कि अगर हम जानते हैं कि ये सबके लिए अच्छा है तो फिर वो क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें हमें गिराना है।
बिल्कुल, इसी सोच के साथ
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।